ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आठवें स्कंध के छठे अध्याय से प्रारंभ करें। श्री शुक उवाच एवं स्तुतः सुरगणैः भगवान हरिरीश्वरः तेषामाविर्भूद्राजान् सहस्रार्कोदयद्युतिः एवं स्तुतः सुरगणैः भगवान हरिरीश्वरः तेषामाविर्भूद्राजान् सहस्रार्कोदयद्युतिः तेनैव महसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षणः नापश्यन् खं दिशः क्षोणीम् आत्मानं च कुतो विभुः विरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा सह
सर्वेण तां तनुम्
स्वच्छाम्बरकतश्यामाम् कञ्चगर्भारुणेक्षणाम्
तप्तहेमावदातेन
लसत्कौसेयवाससा प्रसन्नचारुसर्वाङ्गी सुमुखीं
सुन्दरभ्रुवम्
महामणिकिरीटेन केयूराभ्याम् च भूषिताम्
कर्णाभरणनिर्भात
कपोलश्रीमुखाम्बुजाम् काञ्चीकलापवलय
हारनूपुरशोभिताम्
कौस्तुभाभरणाम् लक्ष्मीम्
बिभ्रतिम् वनमालिनीम्
सुदर्शनादिभिः स्वाश्रयी
मूर्तिमद्भिरुपासिताम्
तुष्टावदेव प्रवरः
ससर्वः पुरुषम् परम्
सर्वामरगणैः साकम्
सर्वाङ्गैरवनिम् गतैः
ब्रह्मोवाच
अजात जन्म स्थिति संयमाय गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय
अणोरणिम्ने परिगण्य धाम्ने
महानुभावाय नमो नमस्ते।
श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार स्तुतः प्रार्थित सुरगणैः देवगणों के द्वारा भगवान सदैव स्वर्ग पूर्ण है, हरि ही भक्तों का दुख हरने वाले, ईश्वर समस्त विश्व के नियंता है, तेषां उन देवताओं के बीच में आविह अभूत प्रकट हो गए, राजन हे महाराज परीक्षित, सहस्रार को दया द्युति ही, ऐसा लगा जैसे कि हजारों सूर्य एक साथ उदित हुए हों। भगवान ने श्री राधा कुंज बिहारी जी की कृपा से, जमुना जी की कृपा से यहां पर भगवान के गुणों को गाने के लिए यह समाज इकट्ठा किया गया है, प्रचार किया गया। वास्तव में इस यज्ञ में, भगवान की गुणगाथा में अनेक लोगों का सहयोग है और अनेक भक्तों का आयोजन है, लेकिन देखा जाता है कि प्रचार किया जाता है तो केवल बोलने वाले का प्रचार किया जाता है, बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं या पंपलेट छापते हैं, तो उसे जो बोलता है उसी का नाम निकलता है, परंतु वास्तव में यह भागवत उत्सव, यह श्रीमद् भागवत कथा कई लोग मिल करके करते हैं। जिस प्रकार ट्रेन चलती है तो ट्रेन तो चलाता है ड्राइवर, लेकिन वास्तव में ट्रेन को रन करने में, चलाने में अनेक लोगों का हाथ होता है। जैसे पहले इंजीनियरिंग विभाग है तो ट्रैक बनाना, पटरी ठीक करना सब ढंग से, यदि वो लाइन न बिछे जमीन पर तो कोई ड्राइवर कैसे रेल चला पाएगा। जिन लोगों ने मिल करके लाइन ठीक किया है वे भी रेल चला रहे हैं, भले वो सामने ड्राइविंग ना करते हैं। या जो झंडी दिखाते हैं या गार्ड है अथवा टिकट बेचने वाला है, वो अभी गाड़ी चला रहा है। यदि वो न टिकट बेचे, टिकट न खरीदा जाए तो गाड़ी का चलना तुरंत ठप हो जाएगा। और जो लोग उस गाड़ी में, ट्रेन में चल रहे हैं वे भी उसको चला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा देकर के चलाते हैं, और नहीं चलने वाले रोक दें कि अब गाड़ी पर नहीं जाएंगे तो रेल ऐसे खाली थोड़े दौड़ेगी। तो श्रोता जो आते हैं कथा में वे भी इस भागवत सप्ताह की गाड़ी को चला रहे हैं, उनका भी उतना ही हाथ है जो आते हैं इस उत्सव में। तो जिन भक्तों ने आयोजन किया है और जिन भक्तों ने सहायता किया है कई प्रकार से, शरीर से, धन आदि से, और जो भी इस कथा में आ रहे हैं, आएंगे, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो इस शुभकामना करता हूं। मनुष्य जीवन का यही एकमात्र लाभ है कि भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कथन किया जाए, श्रवण किया जाए और मनन किया जाए। इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए, इसी लाभ के लिए भगवान वेदव्यास देव ने श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की रचना किया, उसको प्रकाशित किया। भागवत में अनेक स्थान पर यही कहा गया है कि सुनो सुनो सुनो, पिबत भागवतम रसम, इस भागवत रस को पियो पियो पियो। आप लोगों ने भी सुना होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं सुनो तो ठीक है लेकिन करो कुछ, करो, नहीं तो नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगा। लेकिन ऐसा बोलने वाले लोग है भागवत के बारे में नहीं जानते हैं। भागवत करने के लिए नहीं ग्रंथ बनाया गया है, ये सुनने के लिए बनाया गया है। जैसे महाराज परीक्षित ने 7 दिन सुना तो उसके बाद किए क्या गया? सुने अमृत किसी को पीने को मिले तो कोई व्यक्ति कहेगा देखो अमृत पियो लेकिन ठीक से पचा करके शरीर में बल उत्पन्न करो। और अमृत पी रहा है वो अपने आप पचेगा और शरीर के पाचन संस्थान को भी मजबूत कर देगा। इस तरह से श्रीमद् भागवतम है, इसको केवल सुनने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें भगवान के गुण आते हैं। और कोई भी जीव जब कृष्ण के गुणों को सुनता है तो उसका सांसारिक आवेश कम हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण में प्रीति बढ़ने लगती है। और ये प्रेम बढ़ना ही साध्य है, यही लक्ष्य है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में यह परंपरा ही है श्रीमद् भागवतम सुनने की, भले उसका रूप जो भी हो गया हो, परंतु भागवत के प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा है। इतना व्यापक रूप से दूसरा कोई ग्रंथ न पढ़ा जाता है न सुना जाता है, ये आयोजन कर करके। तो हम लोग उसी साधना के लिए जुटे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 5 महासाधन में श्रीमद् भागवत के अर्थों का आस्वादन एक साधन है। 5 सबसे प्रबल भक्ति है, जैसे नाम संकीर्तन, श्री विग्रह की श्रद्धा से सेवा, मथुरा वास और सजातीय वासना विशिष्ट भक्तों का संग तथा श्रीमद् भागवत का श्रवण, अर्थ का स्वादन। 5 महासाधन इसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो हम लोग जैसे भगवान के नाम का जप करते हैं, श्री विग्रह की सेवा करते हैं, हमारी साधना है, तो इसी प्रकार हम लोग भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं साधना के लिए। यह कोई मनौती नहीं है, यह लौकिक क्रिया नहीं है, ये आत्मा के लिए बहुत बड़ा अमृत है, खुराक है। और भक्त लोग इसको जानते हैं, वे इसके रस को समझते हैं। तो यहां पर भगवान की एक लीला को कहने का प्रयास किया जाएगा। वैसे तो अनेक अध्यायों में है, विस्तार के साथ उसे कहना संभव नहीं है क्योंकि यहां एक ही समय कथा होगी शाम के समय। जब 2 सीटिंग में कथा की जाती है तब वो किसी तरह पूरा किया जाता है, लेकिन एक ही सीटिंग में होगी तो बहुत संक्षेप करना पड़ेगा। कथा इस प्रकार से है, एक बार देवराज इंद्र पथ में मिले, दुर्वासा मुनि वैकुंठ से आ रहे थे। बड़े बड़े भक्त वैकुंठ में भी जाते हैं और वहां से भगवान की इच्छा से वे आते हैं प्रचार करने के लिए, जैसे श्री नारद जी। तो इसी प्राकृत जगत में जो वैकुंठ है वहां दुर्वासा जी गए थे। वहां पर उन्हें भगवान की प्रसादी माला भेंट में मिली, बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। आ रहे थे तो रास्ते में देवराज इंद्र मिले हाथी पर चढ़े हुए। उनको देखकर दुर्वासा मुनि ने उनको बड़ी श्रद्धा से भगवान की प्रसादी माला दिया, धारण करेंगे, विजयी होंगे, संसार पर ठीक से शासन करेंगे। क्योंकि माला जो भगवान की प्रसादी माला होती है, ये व्यक्ति को विजय देती है, आरोग्य देती है, धारण करना चाहिए। हमने देखा है कभी कभी लोगों को माला पहनाई जाती है तुरंत निकाल देते हैं, और वो निकालने लायक माला भी होती है क्योंकि भगवान की प्रसादी तो होती नहीं है। प्राय नेता लोग तुरंत लगाते हैं, निकाल आते तो वो तो ऐसे भी लगाने लायक नहीं होते क्योंकि कोई भी व्यक्ति भोक्ता नहीं है। भगवान का प्रसाद लगावे तब तो ठीक है। तो देवराज इंद्र कुछ स्वर्ग के भोगों के अभिमान में थे, भगवान के प्रसादी माला का उन्होंने स्वागत नहीं किया। दुर्वासा जी ने उनको अर्पित किया माला, तो उस माला को लेकर चाहिए था कि देवराज इंद्र लगावे, लेकिन वो लगाए नहीं, ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिए। और वो ऐरावत एक एनिमल पशु वो माला को सिंह से लिया और पैर के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा जी की आंखों के सामने ये घटना घटी तो उन्होंने साप दिया देवराज इंद्र को, तुम तुरंत राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाओ। और इसके बाद यह समाचार असुरों के दैत्यों के समाज में फैला कि दुर्वासा जी ने इस तरह साप दिया है। तब ये लोग आक्रमण किए देवताओं पर। दुर्वासा मुनि का साप था और काल भी ऐसे बदलता रहता है, तो दैत्यों की शक्ति से देवता लोग बुरी तरह परास्त हुए। बहुत मार पीट पड़ी देवताओं पर, किसी के हाथ टूट गए, किसी के सिर फूट गए, कैसे कैसे। तो ये सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से रो रो करके अपनी दशा दिखा रहे थे कि हमको ये चोट है, वो चोट है, हमारा राज्य भी गया, सब गया, और असुर लोग हमको ऐसे मारे हैं, दैत्य लोग। तो ब्रह्मा जी बहुत दुखित हुए, क्योंकि मैनेजमेंट में हेड हैं और देखे कि अन्य जो ऑफिसर है सब मारे गए बुरी तरह से। तो ब्रह्मा जी कहे कि अच्छा ठीक है, चलो क्षीर समुद्र के तट पर भगवान से विनय करें। तो देवता लोग सब गए ब्रह्मा जी के साथ और भगवान शिव भी गए। अब ये दोनों सहायक हैं, हेल्पर हैं, क्या करें। अन्य देवताओं की बहुत मरम्मत हुई थी, बहुत पीटे गए थे, रो रहे थे, तो ये दोनों ले गए क्षीर समुद्र के तट पर। एक प्रार्थना किए ब्रह्मा जी ने, प्रार्थना किया भगवान शिव के साथ मिलकर। उस प्रार्थना को सुनकर श्री भगवान प्रकट हुए। ये लोग क्षीर समुद्र में अंदर श्वेत द्वीप में नहीं जा सकते थे, तट पर रह कर प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रार्थना पूरी हुई तो उसी के बाद सुखदेव गोस्वामी यहां कथा कहते हैं, जिसको मैं प्रारंभ कर रहा हूं। श्री सुखवाच, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और उस सभा में बड़े बड़े लोग हैं, ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ लोग भागवत सुन रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भागवत पढ़ाने वाले वेदव्यास देव स्वयं भागवत सुनने के लिए बैठे थे और उनके भी गुरु श्री नारद जी वहां बैठे थे सुनने के लिए। वशिष्ठ जी बैठे थे, अत्रि जी, चेवन, शरदवान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा और भगवान परशुराम भी। और एक और विचित्र बात है, शुद्ध गोस्वामी ये कथा कहते हैं कि वहां पर जितने भी ऋषि आए थे सब अपने शिष्यों के साथ आए थे। जितने ऋषि मुनि थे, गुरु थे, वे सब अपने शिष्यों के साथ भागवत सुनने के लिए आए थे। यह भागवत का आकर्षण है। वे लोग ये नहीं कहे कि नहीं नहीं तुम आश्रम संभालो और मैं सुन करके आता हूं, चलो सब बंद करो, चलो भागवत सुनने के समान और दूसरा कोई काम नहीं है वास्तव में। तो इसीलिए ऋषि लोग अपना अपना आश्रम आदि सब छोड़ छाड़ करके और भागवत सुनने के लिए आए थे गंगा जी के तट पर, जिसको आज सुखताल कहते हैं। तो वहां पर एक कथा कह रहे थे पहले की, तो स्तुति जब पूरी हुई भगवान की, प्रार्थना पूरी हुई ब्रह्मा जी के द्वारा और शिव जी के द्वारा, तब सुखदेव गोस्वामी यहां से कहते हैं, एवं स्तुतः सुरगण भगवान हरिश्वर। इस प्रकार देवगण भगवान हरि ईश्वर स्तुतः, इस प्रकार देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति हुई। श्री भगवान ने कि यहां तीन विशेषण दिए जा रहे हैं, भगवान, हरि और ईश्वर। भगवान का अर्थ है छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, अनंत ऐश्वर्य से, धन, बल, वैराग्य, सुंदरता, ज्ञान आदि, ये सब ऐश्वर्य है। तो श्री विष्णु इन सब ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। ऐसे प्रभु की जब स्तुति हुई तब वे आदि अभूत तेषां, उन देवताओं के बीच नहीं भगवान प्रकट हो गए। ऐसा नहीं हुआ कहीं से आए हों गरुड़ जी पर चढ़ करके हवाई जहाज की तरह लैंडिंग कर रहे हैं, वहीं पर प्रकट हो गए भगवान, प्रकट हो गए। तेषां आविर्भूत राजन, हे महाराज परीक्षित, भगवान उन देवताओं के बीच में ही प्रकट हो गए। यहां पर श्री विष्णु को, कृष्ण को भगवान कहा जा रहा है। छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, परम सुंदर है, यहां सुंदरता ही अभिप्रेत है और उनका तेज। और हरि, हरि का अर्थ होता है जो भक्तों के क्लेश को, दुख को हर लेते हैं और प्रेम देकर के उनका मन हर लेते हैं। इतना सुंदर है कि बांसुरी बजा करके या अपनी मधुर लीलाओं से समस्त जीवों को आकर्षित करते हैं, उनका मन हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। और अपने आश्रित के या जैसे तैसे भी कोई भी उनके संपर्क में आवे, केवल नाम का उच्चारण भी करे तो भगवान उसका दुख हर लेते हैं। उनका स्वभाव है हरति इति हर हरि, जो हर ले, क्या हर ले, सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मान। नाम का उच्चारण करने वाला या भगवान को प्रणाम करने वाला, भगवान का प्रसाद खाने वाला भगवान का प्रिय होता है और उसके किसी भी दुख को भगवान हर लेते हैं। और अपने सौंदर्य माधुर्य वेणु वादन आदि के द्वारा वे सभी जीवों का मन हर लेते हैं, इसीलिए उनका प्रसिद्ध नाम है हरि और ईश्वर। इसके साथ ही साथ भगवान की भक्ति करना आवश्यक है, ये ऑप्शनल विषय नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर हैं। भजन नहीं करने पर फिर राहत नहीं रहेगी, वे कंट्रोलर हैं, सारे विश्व को जन्म देते हैं, पालते हैं और सबको अपने अधीन रखते हैं, इसीलिए उनको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का संस्कृत में अर्थ है, अंग्रेजी में कहें सो कंट्रोलर, सब पर कंट्रोल है भगवान का। तो गीता में ये कहते हैं कि मेरा भजन करो, मुझे प्रणाम करो, तो भीख नहीं मांग रहे हैं। ऐसे नहीं कि भगवान के धाम में कोई फैक्ट्री चल रही है और 2-4 हजार लेबर घट गए हैं तो कहते हैं मेरा भक्त बनो, मुझे समर्पण करो। नहीं, भजन करने पर खैरियत नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर है, दंड दें, उनके ही प्रतिनिधि जमराज जी बहुत दंड देते हैं भक्ति नहीं करने वालों को। तो इस श्लोक में श्री विष्णु को भगवान, हरि और ईश्वर कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो ऐसे प्रभु देवताओं के मध्य प्रकट हुए। तेषाम आविर्भूत राजन, बोल। अच्छा, कोई बच्चे, बच्चों को खेलने मत दीजिए, उनको बैठाइए, शांति से सुने। तेषाम आविर्भूत राजन, उन देवताओं के बीच में श्री भगवान प्रकट हुए। इतना अपार तेज है श्री भगवान में, इतना तेज है, इतना तेज है कि श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सहस्र अर्क उदय द्युति, हजारों सूर्य अगर एक साथ उगे और उनमें जितना तेज होगा, प्रकाश होगा, वैसा प्रकाश श्री भगवान से निकल रहा था उनके श्री विग्रह से। सहस्र उदय द्युति, हजारों सूर्य के एक साथ उदय होने पर जो प्रभाव फैलेगी वैसा तेज। ऐसे वो तीखा तेज नहीं था, तीक्ष्ण नहीं था, लेकिन प्रकाश के माने में हजारों सूर्य के समान था, एक साथ उदित हो। अब देखते, एक सूर्य उगता है तो कितना आलोक छा जाता है, प्रकाश छा जाता है, अगर 1000 सूर्य एक साथ उगे तो कितना प्रकाश होगा। ऐसा प्रकाश भगवान के उस परम सुंदर देह से निकल रहा था, ऐसे हैं भगवान। तेनैव महसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षणः, उसी महान तेज से, महसा का अर्थ तेज से, महा ज्योति को कहते हैं, भगवान के उस महान ज्योति से, देह के प्रकाश से, देवा प्रतिहत ईक्षण, उनकी आंखें बिल्कुल चौंधिया गई। इतना प्रकाश हुआ कि वे देख नहीं पाए भगवान को। नापश्यन् खम दिशः छोणिम आत्मानं च कुतो विभुम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इतनी आंखें चौधिया गई देवताओं की, प्रतिहत की क्षण, उनकी दृष्टि हत हो गई ज्यादा प्रकाश के कारण, तबे ना पश्यन खम, वे आकाश को नहीं देख सके, आकाश उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कैसा है, न दिशाएं दिखाई दे रही थी कौन किधर है क्या है। आकाश और दिशा और क्षणी पृथ्वी भी नहीं दिखाई दे रही थी, जिस स्थान पर खड़े थे वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो फिर आकाश में, दिशाओं में और पृथ्वी पर स्थित दूसरे जीव कैसे दिखाई दे सकते थे, यहां तक कि आत्मा वे आंखें इतनी चौधियां गई कि वे अपने को भी नहीं देख रहे थे। तो कुतो विभूम, फिर भगवान को कहां से देख पाएंगे, जहां से प्रकाश निकल रहा है उसको कैसे देख पाएंगे, वो अपने को भी नहीं देख पाए उस प्रकाश के कारण आंखें चकचका गई, चौधियां गई इसको कहते हैं। तो किसी को नहीं देख पाए, अपने को भी, आत्मानं च कुतो विभूम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब अपने को भी नहीं देखे, आकाश को, दिशाओं को, पृथ्वी को और इन सब में स्थित जीवों को नहीं देख पाए, तो कहां से भगवान को देखेंगे। केवल दो व्यक्ति ठीक से देख रहे थे भगवान को, समर्थ थे देखने के लिए, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव। तो आंखें चौधरी आ गई, इस तरह से श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सह सर्वेण ताम तनुं, ध्यान दीजिए, भगवान के उस तनु शरीर को भगवान विरिंच और सह सर्वेण, सर्व कहते हैं भगवान शिव को, तालाब भी स से लिखा जाता है उसको सर्व। तो सह सर्वेण, सबसे पहले ब्रह्मा जी देखे भगवान को नक्श सिख तक, भी वही तेज था लेकिन ब्रह्मा जी की आंखें नहीं चौधरी आई, वे भगवान के परम सुंदर देह को, स्वरूप को देखने में समर्थ हुए। सह सर्वेण, शिव जी के साथ देखे, भगवान ब्रह्मा जी देख रहे थे और भगवान शिव भी देख रहे थे। क्या देख रहे थे, ताम तनु, उस तन को, उस श्री विग्रह को। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान निराकार है, अंधे जरा इस श्लोक को तो पढ़े, तो थोड़ा भी संस्कृत का एक आध शब्द जानते होंगे तो जरूर समझ जाएंगे। ब्रह्मा जी उस शरीर को देखे, यदि भगवान के शरीर में और उनमें आत्मा में भेद नहीं है, लेकिन फिर भी उस आकार को बताने के लिए तनुम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सहसर्वेण ताम तनुम, उस ताम का अर्थ उस अनिर्वचनीय जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनमें अपार तेज है, अपार सौंदर्य है, ऐसे भगवत श्री विग्रह को, शरीर को विरंची ने देखा। और भगवान, क्योंकि वो भगवान है, समर्थ है ब्रह्मा जी, इसलिए भगवान का दर्शन करने में वो समर्थ हुए, देख सके। और शिव जी देखे, कैसा वो तनु था। तनु संस्कृत में स्त्रीलिंग है, इसीलिए भगवान का वर्णन यहां स्त्रीलिंग में किया जा रहा है, तनु के अनुसार। तो भगवान का शरीर कैसा है, स्वच्छाम सुअच्छाम। ये अच्छ शब्द संस्कृत है, स्वच्छ मतलब सुअच्छ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या कहा जाए। पहला विशेषण दिया जा रहा है कि अत्यंत सुंदर, यहां अच्छा का अर्थ अत्यंत सुंदर। भगवान के प्रत्येक अंग की जो बनावट है, वो तो बनावट तो नहीं है, बना नहीं हुआ है वास्तव में, लेकिन उनके शरीर की गठन अद्भुत है। आंख या ललाट भौं है, या उनके केस, कर्ण, हाथ, पैर, कमर, वक्षस्थल, सब कुछ अद्भुत है। तो क्या किया जाए, किसी प्राकृत शब्द की सहायता से ही तो वर्णन किया जाएगा। तो सुअच्छा, अतिशय अच्छा, अतिशय सुंदर श्री विग्रह। कैसा रंग है, मरकत श्यामा, मरकत मणि के समान सांवला। मरकत मणि इसलिए कहा जा रहा है कि चमचम चमचम शरीर चमक रहा है, उसी शरीर से तो इतना तेज निकल रहा था सूर्य जैसा। मरकत श्यामा, मरकत मणि नीला होता है, श्याम होता है, उस तरह से भगवान के शरीर का वर्ण था। मरकत मणि पर यदि कोई आवरण न हो, धूल आदि न हो, तो बहुत चमकता है, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह भगवान का शरीर चमकता है शीशा के तरह, उसमें कोई भी व्यक्ति अपना मुंह देख सकता है, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में, गाल में, पीठ में गोप बालक अपना चेहरा देख कर तिलक करते थे। उन्हें दर्पण की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि श्री कृष्ण का सब कुछ चमकता है। और कभी भी भगवान को कोई फोड़ा फुंसी घाव नहीं हुआ, कोई दाग नहीं है कहीं भी, केवल श्रीवत्स रेखा भगवान धारण करते हैं, वो रुमावली है और कृपा करके भृगु जी का पद चिन्ह धारण करते हैं। बाकी भगवान के शरीर में कहीं कोई कटाव नहीं है, और संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसका शरीर कहीं ना कहीं कटावट न हो। अभी न कटे फिर भी बुढ़ापा में तो छीण हो ही जाएगा, लेकिन भगवान का जो श्री विग्रह वो नित्य है, सदा यौवन से युक्त रहता है। उसी से यौवन आता है, वो क्या यौवन से युक्त रहेगा। तो स्वच्छ मरकत श्याम नील गर्भारूढ़क्षण, वह तनु कैसी है, वो भगवान का वो श्री विग्रह कैसा है। कंज गर्भ, कंज का अर्थ कमल, कमल के गर्भ में भीतर जो सौंदर्य रहता है, वैसी सुंदर सुंदर आंखें भगवान की हैं। कंज गर्भ अरुण क्षण, आंखें कमल के समान है और आंखों में थोड़ी थोड़ी ललाई है, अरुणिमा है, कोमलता का वर्णन किया जा रहा है भगवान के आंख का और श्री विग्रह का। उसमें कमल के समान सुगंध निकलती है भगवान के आंख से या कान से, हाथ से, चरण से, चंदन, कस्तूरी और केसर और पद्म, चारों के सुगंध निकलते रहते हैं। तो आंखों से सुगंध आती है और सुकुमार अतिशय सुंदर, तो इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कंज गर्भारूढ़क्षण। ब्रह्मा जी की आंखें हैं जो भगवान के रूप को देख रही हैं और सुखदेव गोस्वामी का शब्द आप लोगों ने देखा होगा, मैच में कुछ लोग खेलते हैं और कोई रेफरी वर्णन करता जाता है, वर्णन करता जाता है, तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं, भगवान शिव देख रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कैसे कैसे। जब ब्रह्मा जी की दृष्टि पूरा सांवले शरीर पर पड़ रही है, रंग को विचार कर रहे हैं, तब वे कहते हैं मरकतश्यामा, जो आंखों पर दृष्टि गई भगवान ब्रह्मा जी की, तो वे कहते हैं कंज गर्भारूढ़क्षण, कमल गर्भ है के समान अरुण इक्षण नेत्र वाले भगवान। तप्त हेमावदाते न लसत कौशेय वाससा, वस्त्र पर ध्यान जा रहा है ब्रह्मा जी का, शिव जी का। वस्त्र कैसा है, तप्त हेमावदाते न लसत कौशेय वाससा, भगवान श्रीहरि पीत वस्त्र पहने हैं। कैसा पीला वस्त्र, तप्त हेम, तप्त कांचन के समान पीला पीला वर्ण, ये भगवान का स्वभाव है, वो पीत वस्त्र पहनते हैं। ये भूत प्रेत काला साला पहनते रहते हैं, सब काला है इस समय से। भगवान हमेशा पीत वर्ण का वस्त्र पहनते हैं। तो तप्त हेम आवदाते हैं, तप्त हेम, हेम माने सोना, तप्त का अर्थ तप्त, तपाया हुआ सोना जैसे चमकता है पीला पीला, इस तरह से श्री भगवान का वस्त्र है। लसत कौशेय वस्त्र, बहुत सुंदर वस्त्र लगता है भगवान के सांवले शरीर पर, पीला वस्त्र बहुत सुंदर लगता है। कभी कभी वैष्णव लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण क्यों पीला कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी के शरीर का रंग पीला है, तो उसकी याद करके भगवान श्री कृष्ण पीला पहनते हैं। तो यहां पर वर्णन हो रहा है लसत कौशेय वस्त्र, कौशेय कोष रेशमी वस्त्र जो तपाए हुए सोने की तरह पीत वर्ण का है, बहुत सुंदर लग रहा है, इससे युक्त है भगवान। प्रसन्न चारु सर्वांगी, सर्वांगी में, और भगवान के सारे अंग, चाहे आंख, नाक, कान, हाथ, जो कुछ भी है, ऐसा लगता है कि सारे अंगों से प्रसन्नता विकीर्ण हो रही है, फूट पड़ रही है। प्रसन्न चारु और अत्यंत सुंदर, शरीर का प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है और सुंदरता के साथ ऐसा लगता है कि प्रत्येक शरीर से, प्रत्येक अंग से प्रसन्नता की धारा निकल रही है, बह रही है प्रत्येक अंग से। जैसे इस समाज में देखा गया, मनुष्यों के समाज में, कि प्रसन्नता केवल चेहरे से कभी कभी व्यक्त होती है, लेकिन भगवान का प्रत्येक अंग प्रसन्नता आनंद बिखेरता रहता है, क्योंकि वो आनंद घन है। सांवरो घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार, वो आनंद निकलता रहता है, प्रेम निकलता रहता है भगवान से। प्रसन्न चारु, चारु का अर्थ सुंदर, भगवान के शरीर के प्रत्येक अंग प्रसन्नता बिखेर रहे हैं और अत्यंत सुंदर है सर्वांग। सुमुखिन, और मुख अतिशय सुंदर है, सुंदर मुख, सुंदर भ्रुवान, और भौहें बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी जैसे जैसे देख रहे हैं भगवान को, वैसे वैसे श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। भौहें बहुत सुंदर हैं और मुख बहुत सुंदर। महामणि किरीटेन केयूराभ्याम च भूषितम्। महामणि किरीट, भगवान जो मुकुट पहने हैं वह मुकुट महान मणियों से बना हुआ है, बहुत मूल्यवान मणि से बना हुआ है। ये महामणि यहां कह करके अभी सोना या हीरा आदि से तुलना नहीं किया जा रहा है। महामणि अद्भुत स्पिरिचुअल मणि, तो महामणि क्रीट है ना, भगवान के मुकुट में महामणि लगा हुआ है, बहुत अमूल्य मणि, तो उससे वे युक्त है। महामणि क्रीट है ना, और केयूराभ्याम च भूषिता, और ऐसे ही महामणि में केयूर से आभूषित है। केयूर कहते हैं यहां पर जो गहना पहना जाता है केहनी के ऊपर, यहां पर इसको केयूर कहते हैं। तो केयूराभ्याम, भगवान के दो बाहें हैं, तो दोनों बाहों में केयूर पहने हुए केयूराभ्याम च भूषिता से भूषित है। प्रसन्न चारु सर्वांग, कर्णाभरण निर्भातक कपोल श्री मुखाम्बुजम्। भगवान के मुख का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी फिर से भगवान के मुख को देखने लगते हैं। तो कर्णाभरण, भगवान के दोनों कानों में कुंडल झूम रहे हैं, दो कुंडल, एक एक कान में एक कुंडल, मकराकृत कुंडल ऐसे झूमते हैं। ये भगवान बहुत फुर्तीले व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि उनको घुटने में दर्द है तो उठ रहे हैं भार मान करके, बिल्कुल फ्रेश हैं। तो स्वाभाविक ही मुख का मूवमेंट करते हैं, इधर उधर देखना, इसे देखना, देवताओं पर देखना, फुर्तीले हैं, तो उसे कुंडल हिलता है। तो कर्णाभरण निर्भात, अब से चमचम चमकता है कुंडल, तो कुंडल की आभा भगवान के कपोल पर पड़ती है, गाल पर पड़ती है। तो इस तरह से चमकते हुए गाल से श्री है जिनके मुखाम्बुज पर, उनके मुखाम्बुज पर अतिशय सुंदरता और तेज आभा है। ऐसे मुख से युक्त भगवान का श्री विग्रह है। कांची कलाप बलय हार नुपुर शोभितम्। अब समग्र शरीर का अवलोकन ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो श्रील सुखदेव जी वर्णन करते हैं। कांची कलाप, भगवान के कमर में कांची कलाप है। कांची कहते हैं सोने की बनी हुई करधनी, सोने की बनी हुई करधनी, कांची, कंचन सोना को कहते हैं। तो करधनी में कई लड़ियां हैं और कई छोटी छोटी घंटियां हैं, इसीलिए कलाप समूह शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, कांची कलाप। अथवा स्वर्ण समुदाय ही सब हाथ में है, चरण में है, सोने के गहना, कहने का आशय यह है। पर यह नहीं समझना चाहिए कि यहां इस पृथ्वी का थर्ड क्लास के 22 कैरेट का सोना भगवान पहनते हैं, नहीं नहीं, ये तो किसी काम का नहीं है। भगवान दिव्य जगत का स्वर्ण पहनते हैं, सब स्पिरिचुअल होता है। कांची कलाप करधनी बांधे हैं जिसमें अनेक लड़ियां हैं और इसके साथ बलय, बलय कहते हैं कंकण को, कंगन और हार, बहुत मूल्यवान हार लगाए हैं और नूपुर चरण का गहना पायजेब शोभितम। इस प्रकार इन आभूषणों से भगवान अतिशय सुशोभित। कौस्तुभा भरणाम और कौस्तुभ मणि का आभरण पहने हैं गले में, कंठ में, भगवान का कंठ कौस्तुभ मणि से आभूषित है। कौस्तुभा भरणाम लक्ष्मी विभ्रतिम, और भगवान श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर धारण किए हैं। भगवान के बाएं भाग में कलेजा पर यहां पीत वर्ण की रुमावली है जहां श्री जी रहती हैं। भगवान ने उनको अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया। प्रिया जी लक्ष्मी जी उनको कलेजा के समान प्रिय है, इसलिए कलेजा के पास रखे हैं। ये भगवान से ये सूचित कर रहे हैं। तो लक्ष्मी विभ्रती और वनमालिनी, और भगवान परम सुंदर फूल की माला लगाए हैं। हार तो रत्न का लगाए ही हैं, इसके साथ फूल की माला लगाए। सुदर्शनाद भी शास्त्र मूर्तिमद भी उपासित, और सुदर्शन आदि चक्र, सुदर्शन आदि जो अस्त्र हैं भगवान के, जैसे कौमोद की गदा, पांचजन्य शंख और सुदर्शन नाम का चक्र, तो ये सब मूर्ति धारण करके देवता के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान ने हाथों में ही सब नहीं लिए हैं, क्योंकि पहले दो भुजा का वर्णन है, दो भुजा से बात कर रहे हैं। श्री भगवान कभी भी दो भुजा के हो जाते हैं, चार भुजा के हो जाते हैं। तो यहां पर ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि सुदर्शन आदि जो अस्त्र हैं भगवान के, वे मूर्तिमान होकर के सेवा कर रहे थे। मूर्तिमद भी रूपासता, तुष्टाव देव प्रवर सर्व पुरुषम परम सर्वा मर गणई साकम सर्वांगई रमणीम गतई। तो जब श्री ब्रह्मा जी और श्री भगवान श्री शिव जी भगवान को इस तरह से देखे, तो वे दोनों भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु की स्तुति करने लगे, और देवता भी धीरे धीरे उठे, वे लोग भी स्तुति करने लगे। लेकिन देवता पहले सभी गिरे हुए थे, प्रणाम कर रहे थे। सर्वामर गणेश साकम सर्वांगई रवनिम गतई, और देवता भी स्तुति कर रहे हैं शिव जी के साथ, ब्रह्मा जी के साथ उठ करके। और देवता ब्रह्मा जी भगवान शिव और समस्त देवता ये सब कैसे हैं, तो सर्वांगई अवनिम गतई, इनके सारे अंग पहले भूमि पर पड़े अर्थात साष्टांग प्रणाम किए सारे देवता। और ब्रह्मा जी और भगवान शिव ये भगवान हरि को साष्टांग प्रणाम कर, सर्वांगई अवनिम गतई, इनके सारे अंग अवनी पर गए हैं पृथ्वी पर। जब इस प्रकार से भगवान को प्रणाम किया जाता है आठ अंग से, तो इसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। आठ अंग इस प्रकार से है कि दंड की तरह पृथ्वी पर पड़ जाना, इसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो हाथ दोनों आगे रहता है जो पृथ्वी पर सटा रहता है, और सिर भी पृथ्वी पर सटा रहता है, वक्षस्थल घुटना और पैर दोनों, पैर दोनों पीछे जाते हैं। तो ये पांच अंग धरती का स्पर्श करते रहते हैं, पादाभ्याम जानुभ्याम वक्षसा शिरसा और हस्ताभ्याम, पांच, दोनों हाथ आगे पैर पीछे और सिर वक्षस्थल और घुटना पृथ्वी का स्पर्श करते हैं। और इसके साथ ही वो भक्त पहले भगवान को आंख से देखता है प्रणाम के पहले, तो आंख से देख करके भी वो झुकता प्रणाम करता है, तो नेत्राभ्याम आंख से देखना, और वचसा कुछ बोलता है कि हे प्रभु मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, और मन में भी झुकता है, तो वचन से मन से और आंख से प्रणाम करता है। तो ये तीन प्रणाम हुआ, और पांच पहले जो भी बताया इसको अष्ट अंग युक्त प्रणाम कर, षष्टांग प्रणाम कर। तो सारे देवता भगवान को षष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। देखिए महत्व भगवान का। कभी कभी लोग ऐसे बिना सोचे कह देते हैं, अरे कोई भी देवता एक समान है। कोई एक समान कैसे है? अभी देवताओं की पिटाई हुई थी, भगवान प्रकट हुए हैं, अब उनको उपाय बताएंगे सुख प्राप्त करने के, सभी एक ही कैसे हो जाएंगे? जिन लोगों को कुछ ज्ञान नहीं होता है वैसे वैसे लोग ही बोल देते सब एक ही है, और कोई भी रास्ता पकड़ो एक ही जगह जाओगे, कोई भी रास्ता पकड़ो एक ही जगह जाओगे। कोई पागल भी नहीं बोल सकता है वैसे। हम लोग यहां बैठे हैं और कोई व्यक्ति इधर से अंबाला की तरफ की गाड़ी पकड़े और कोई उधर बॉम्बे की तरफ के, कोई ऊपर उड़ जाए, कोई जमीन में धस जाए, कोई उधर जाए, कोई उधर, सब एक ही जगह चले जाएंगे। ये कैसा विचार है वास्तव में? ये महापागल महामूर्ख का विचार है। कुछ भी करो बस एक ही जगह चले जाओगे। तब क्या पूछताछ करने की जरूरत है? इंक्वायरी क्यों करते हैं? क्यों टिकट लेते हैं? कोई भी गाड़ी पकड़िए और जहां चाहते हैं चले जाए। तो अजीब अजीब बात बोलते हैं लोग। कुछ भी करो सब एक ही जगह जाओ, कहीं जगह जाए। और कोई भी देवता बस एक समान है, चाहे इसको भजो चाहे इसको भजो। अरे जिसको भजन करना है ठीक है भजो, लेकिन ये मत बोलो कि सब एक ही है। ये सब यहां सष्टांग प्रणाम कर रहे हैं ना, सबकी आंखें चौधरी आ गई थी, भगवान की स्तुति किए हैं। भगवान हरि ईश्वर, सभी लोग थोड़े भगवान और हरि और ईश्वर हैं, हैं बड़े पद पर, तो उनके अनुसार ही उनको संबोधित करना चाहिए। लेकिन भगवान तो भगवान है, सारे देवता हैं, स्तुति कर रहे हैं। कितना सुंदर श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के रूप का वर्णन किए। यही है भक्तों का श्रोतव्य विषय, भगवान के रूप की बात सुननी चाहिए, गुण सुनना चाहिए, चरित्र सुनना चाहिए। तो इन छह श्लोकों में, सात श्लोकों में, चार पांच श्लोकों में भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। अब देवताओं के द्वारा जो उनकी स्तुति फिर से हुई, जैसे कहा गया तुष्टावत देव प्रवरः, देवताओं में श्रेष्ठ श्री ब्रह्मा जी भगवान की फिर स्तुति करने लगे। यही तो भक्ति है कि भगवान का पट नहीं खुला है अभी मंदिर में, तब भी कीर्तन चालू, और ज्यों पट खुलता है त्यों गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अरे भगवान चाहे पट के भीतर हो या चाहे प्रकट हो, भक्त का काम है कीर्तन करना। तो ब्रह्मा आदि देवता पहले भी कीर्तन किए थे जब भगवान प्रकट नहीं थे, वे कभी भी ये नहीं कहे कि भगवान निराकार है। वो प्रकट हो चाहे न हो, वो जानते हैं कि भगवान हैं और उनका दिव्य आकार है, सबसे सुंदर व्यक्ति है, आंखों के सामने नहीं थे फिर भी कीर्तन गा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी शिव जी इंद्र और अन्य सब देवता भगवान का नाम गाते हैं, स्तुति करते हैं। आजकल के किसी आदमी को जो बिल्कुल पढ़ा लिखा मतलब धार्मिक चीज नहीं जानता है, उसको कहिए कि भगवान का नाम जपना चाहिए, तो वो कहेगा भगवान का नाम ही नहीं है, क्या जपेंगे? उसको कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। बस यही उपदेश होता है, यही बहुत भारी ज्ञान संसार में दिया जाता है। तो अब जप करने के लिए कहते हैं बोलो भगवान का नाम, तो वो कहता है वो नाम है ही नहीं भगवान का, क्या गाया जाएगा? लेकिन देवता तो सब गा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सबसे अधिक मूर्ख जीव जो है वो मनुष्य है वास्तव, ये भागवत में लिखा हुआ है। सबसे थर्ड क्लास का विचार और कम ज्ञान मनुष्य को होता है। भगवान के बारे में अनर्गल कल्पना करना, ये वो, ब्रह्मा जी तो कभी ऐसा तर्क नहीं करते, भगवान शिव कभी तर्क नहीं करते, रात दिन राम राम रटते रहते हैं। तो मुपुनि राम राम दिन राते सादर रटहु अनंग आराती। तो यहां पर देवताओं के द्वारा भगवान के उस परम सुंदर रूप का दर्शन प्रस्तुत किया गया, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, और रूप को देख करके कैसे कैसे भाव उत्पन्न हुआ, आंखों की क्या दशा हुई और किस प्रकार से मन में भक्ति उमड़ रही है भगवान के रूप को देखकर, उनकी स्तुति में बातें आ रही है। हमें आप श्रोता बंधुओं से भक्तों से यही कहना है कि भगवान का यह रूप बिल्कुल सत्य है, सनातन है और यह अपरिच्छिन्न है। ब्रह्मा जी यही बात चालू करते हैं, ब्रह्मवाच अजात जन्म स्थिति संयमाय गुणाय निर्वाण सुखारणवाय अणोरणिम ने परिगण्य धामने महान भावाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान का गुण गाते हुए, और सबसे पहले वे यही कहते हैं कि हे प्रभु, जो ये आपका रूप है, आपका जो स्वरूप है श्री विग्रह, यह नित्य है और यत्ता रहित है, अपरिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्न का अर्थ इसकी कोई सीमा नहीं है, यह सर्वत्र व्याप्त है और सब कुछ इसी के भीतर है। दो बात इस श्लोक में कह रहे हैं, अजात जन्म स्थित संयमाय, हे प्रभु आपका कभी जन्म नहीं है और आपकी कभी स्थिति नहीं है और प्रलय नहीं है। अजात जन्म स्थित संयम आय, अजात जन्म, अजात स्थिति, अजात संयम। हम लोग जैसे जन्म लेते हैं, प्राकृत शरीर धारण करते हैं, एक दिन शरीर छूट जाता है, प्रभु आप कभी भी ऐसा प्राकृत शरीर धारण नहीं करते हैं। भगवान प्रकट होते हैं और उनका यदि वो जन्म कहा जाए तो वो जन्म दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम। अजात जन्म स्थिर संयम आय, अभी अभी जो आप हम लोगों के समक्ष प्रकट हुए हैं, कौन कहेगा कि आप जन्म लिए हैं? जीवों जैसा या देवताओं जैसा आपका जन्म नहीं होता है, आप प्रकट होते हैं। क्यों? अगुणाय, आप अगुण हैं, आप प्रकृति के सत्व रज तम इन तीनों गुणों से परे हैं, आपका प्राकृत जन्म कैसे हो सकता है? जन्म स्थिति या संयम प्रलय ये सब प्रकृति के गुणों के अंदर होता है, माया रज जगत में होता है, और अब माया के अधीश्वर हैं, गुणों से परे हैं। यदि भगवान पूछे तो मैं हूं क्या, मेरा स्वरूप क्या है, तब ब्रह्मा जी कहते हैं निर्वाण सुखारणवाय, आप दुखहीन सुख के समुद्र हैं। संस्कृत में बाण का अर्थ दुख होता है, दुख, और दुख से जब मुक्ति होती है, दुख कोई न रहे, तो इसको कहा जाता है निर्वाण। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा इसको निर्वाण, दुख नहीं हो। तो निर्वाण सुखारणवाय, भगवान विष्णु दुख से शून्य सुख के समुद्र है, अरणव है। दुख से विद्ध नहीं है भगवान का जीवन या भगवान की लीला या भगवान का स्वरूप, अनंत सुख के समुद्र है भगवान। और निर्वाण सुख, यहां का निर्वाण सुख का अर्थ है दुख से शून्य सुख, वह सुख जिसमें कोई दुख नहीं है, अर्थात सच्चा सुख, सत्य सुख, अप्राकृत सुख के आप अरणों हैं, समुद्र हैं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान का श्री विग्रह जो है नक्ष सिख तक, उससे अनंत अनंत सुख समुद्र निकलते हैं, अनादिकाल सुख ही निकलता रहता है, और दुखहीन सुख जिसमें दुख मिश्रित नहीं है। इस संसार में ऐसा सुख किसी को नहीं मिलता है, कभी कभी सुख की अनुभूति होती है तो अनेक प्रकार के दुख से विद्ध रहता है, अनेक प्रकार के आदमी को चिंता होती है, ये होता है वो होता है, थोड़े काल के लिए अनुभूति होती है कि हमको सुख मिला है, वो सुख सुख नहीं होता है, केवल एक मन की वृत्ति मात्र होती है अनुकूल, सुख नहीं होता है। लेकिन भगवान का जो रूप है या उनका चरित्र, उनकी लीला है, उसमें सुख है, अनंत सुख है। अणु रणिम में और परिगण्य धाम में, और ऐसे आप अणु से भी अणु हैं, छोटे से भी छोटे आप अति सूक्ष्म हैं। इसका अर्थ है कि आपका ज्ञान होना बड़ा कठिन है, दुर्गे है। जब आप स्वयं अपना वर्णन करते हैं तब आपका ज्ञान होता है। जैसे भगवद गीता में भगवान ने अपने विषय में स्वयं बताया है, तो भगवद गीता पढ़ करके कृष्ण को आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन ऐसे भगवान के विषय में कोई क्या सोचेगा, क्या जानेगा कि भगवान सूक्ष्म है, दुर्गे है। पर ऐसा होते भी अपरिगण्य धाम ने, हे प्रभु आपका जो धाम है, धाम माने स्वरूप, आपका जो स्वरूप है वह परिच्छिन्न नहीं है, विभू है, यत्ता शून्य है। भगवान देखने में लगता है कि एक जगह है, छोटे से हैं, लेकिन वो सर्वत्र व्याप्त हैं, बल्कि सारा जगत उनके भीतर है। ये भगवान के स्वरूप की विशेषता है, वो परिच्छिन्न नहीं है, उसकी यत्ता नहीं है, सीमा नहीं है, क्योंकि महानुभाव आया। ऐसा होना आश्चर्य की बात नहीं है, आप महाप्रभाववान हैं, महाप्रभावशाली हैं। ऐसे प्रभु को हम नमो नमः ते, आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। और कोई जीव क्या कर सकता है, भगवान को प्रणाम कर सकता है, यह बहुत बड़ी भक्ति है। तो ये सब देवता भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अजात जन्म स्थित संयम आया गुणाय निर्वाण सुखारणवाय अणो रणिम्य परिगण्य धाम ने महानुभावाय नमो नमस्ते। इसे सीखना चाहिए कि जब भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य सब देवता विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। प्रणाम करने में ही जीव की शोभा है। भगवान प्रणाम के विषय है, प्रेम के विषय है। प्रेम उन्हीं को करना चाहिए, उन्हीं को प्रणाम करना चाहिए, उन्हीं का भरोसा करना चाहिए। अब श्री ब्रह्मा जी देवताओं के साथ कहते हैं, रूपम तवैतत पुरुषर सभेज्यम श्रेयोर्थिभिर वैदिक तांत्रिकेण जोगे न धात सहनस त्रिलोकान पश्याम मुस्मिन विश्वमूर्तव। हे प्रभो तव एतत रूपम, ये जो आपका रूप है जो हमारे सामने आप प्रकट किए हैं, श्रेयोर्थि भी, जो लोग श्रेय चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, सुख चाहते हैं, उनके द्वारा इस रूप की सदा उपासना करनी चाहिए। यह जो रूप है यही पूज्य है, स्मरण का विषय होना चाहिए, पूजा का, भक्ति का विषय। तव एतत रूपम, आपका यह रूप श्रेयोर्थि भी सदा इज्यम, श्रेय के जो अर्थी हैं, जो श्रेय चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं या भोग चाहते हैं या वैकुंठ चाहते हैं, उनको श्रेयोर्थि कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में सुख चाहता है, कोई ऐसा नहीं है जो दुख चाहता हो, श्रेय चाहता है। श्रेय का अर्थ है हित, सुख। तो जो लोग भोग चाहते हैं इस दुनिया का, या वैकुंठ चाहते हैं, या मुक्ति चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे आपके इस रूप का भजन करें। हे पुरुषर सभा, हे पुरुषोत्तम, आप पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आपका यह रूप ही भजनीय है, आप उपास्य हैं। तो सदा उपासना करनी चाहिए। कैसे उपासना करनी चाहिए? वैदिक तांत्रिकेण योगेन, वैदिक उपाय से या तांत्रिक उपाय से। वैदिक का अर्थ है भगवान का नाम कीर्तन आदि करना, कथा सुनना, इसको वैदिक मार्ग कहते हैं। और तांत्रिक मार्ग नारद पंचरात्र के द्वारा भगवान के श्री विग्रह की आराधना करना, मूर्ति स्थापित करके और विविध प्रकार से भोग लगाना, आरती करना, उनके लिए फुलवारी बनाना, रथ यात्रा निकालना, ये सब नारद पंचरात्र के अनुसार भगवान की उपासना है। और कीर्तन करना, भगवान के गुण सुनना, गाना, ध्यान करना, ये सब वैदिक मार्ग है। तो वैष्णव लोग दोनों से चलते हैं, वैदिक तंत्र के अंदर, वैदिक मार्ग से और नारद पंचरात्र आदि तंत्र ग्रंथ से। यहां तांत्रिक अर्थ आजकल का प्रसिद्ध है, सब तांत्रिक नहीं है, तांत्रिक अर्थ है यहां नारद पंचरात्र में जो वर्णन है, स्पष्ट वर्णन है कि किस तरह से भगवान का मंदिर बनाना चाहिए और भगवान की उसमें प्रतिष्ठा करनी चाहिए और सुबह से शाम तक कैसे कैसे भगवान को भोग लगाना, विविध प्रकार से सेवा करना, मंदिर में उत्सव करना, इसको नारद पंचरात्र की विधि कहते हैं। तो वैदिक विधि और पंचरात्रिक विधि, चाहे जो भी हो, यही रूप उपास्य है और यह विभु है। हे प्रभु, हे विश्व विधाता, हम तो अपने साथ तीनों लोकों के जीवों को देख रहे हैं आपके भीतर। पश्यामि अमुस्लि नुह विश्वमूर्तौ। विश्वमूर्ति का अर्थ है कि विश्व जिनके मूर्ति में है, श्रीधर स्वामी जी अर्थ करते हैं। विश्वम मूर्तौ जस्य, ये सारा विश्व जिनके स्वरूप के अंदर है, मूर्ति में है, मूर्ति मतलब रूप है, ये सारा विश्व भगवान श्री कृष्ण के भीतर है, इसलिए उनको विश्व मूर्ति कहते हैं। मम देह गुडाकेश, भगवान ने गुडाकेश को, अर्जुन को कहा कुरुक्षेत्र में कि मेरे देह में देखो, सारा विश्व ब्रह्मांड सब मेरे देह के भीतर है। और अर्जुन ने देखा, भगवान के देह के भीतर ही सब कुछ था। तो इसलिए भगवान को विश्व मूर्ति कहते हैं। विश्व मूर्ति कहते हैं, विश्व जिनके मूर्ति में है, जिनके रूप के भीतर है, उसको विश्व मूर्ति कहते हैं। तो ये बात समझने की है कि भगवान का यह जो रूप है, ऐसा नहीं मनुष्यों जैसा है कि मनुष्य जैसा सीमित है, परिच्छिन्न है। अब मनुष्य के पेट में कितना चीजें अटवाएंगे, थोड़ा खा लेता है तो अपच हो जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के इसी शरीर में सारा विश्व ब्रह्मांड है, सारा विश्व है, तो अपरिच्छिन्न है। और मैं तो देख रहा हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं पश्यामि न सह, अपने साथ, मैं अपने साथ ही सबको देख रहा हूं कि आपके शरीर के भीतर ही सब है। त्वय्यग्रयासीत् त्वय्यमध्यासीत् त्वय्यन्तयासीत् इदमात्मतंत्र है, आप आत्मतंत्र है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र प्रभु में, आप में यह पहले भी था विश्व, त्वयि अग्रयासीत् सृष्टि के पहले था और सृष्टि के बाद भी त्वयि मध्यासीत् और त्वय्यन्तयासीत्, और अंत में भी आप में ही रहता है। ये सारा विश्व प्रपंच, सारे जीव समुदाय आप में थे पहले, इस समय भी आप में हैं, बाद में भी आप में ही रहते हैं। आत्मतंत्र इदम, इदम तो यह विश्व स्वतंत्र आप में था। त्वमादिरंतो जगतस्य मध्यम, मध्यम आप इस, बल्कि इस जगत के आप आदि हैं, इसके अंत हैं और इस जगत के मध्य भी हैं। घटस्य मृतस्य एव परः परस्मात्, जैसे मिट्टी के घड़े में, घड़े के शुरू में भी मिट्टी है, मध्य में भी मिट्टी है, अंत में भी मिट्टी है, मिट्टी के अलावा उसमें कुछ नहीं है, तो इस जगत के भी आप ही कारण हैं। इसका अर्थ है कि आपकी शक्ति जगत के रूप में परिणत हुई है। बहुत फिलोसफिकल टॉपिक है, घड़े के भीतर बाहर, शुरू में, अंत में, मध्य में केवल माटी ही माटी है, तो वास्तव में भगवान की शक्ति परिणत हुई है विश्व के रूप में, किसी भी वस्तु के रूप में। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं इसको जानता हूं, और इतना प्रमाणिकता के साथ कहते हैं कि मैं पश्यामि, मैं देख रहा हूं कि सारा जगत आप में है। इसलिए विद्वान लोग आपको इस जगत में भी देखते रहते हैं। तुम माय यात्मा श्रेया स्वयेदम निर्माय विश्वम तदनु प्रविष्ट, आप आत्म माया, माया स्वया माया, यह माया शक्ति आपकी है, आप अपनी माया शक्ति के द्वारा जो आप पर ही आश्रित है, आप ही उसके आश्रय हैं, इस माया के द्वारा विश्व निर्माय, इस विश्व का निर्माण करके तद अनुप्रविष्ट, फिर आप विश्व में कण कण में जीव जीव में सबके हृदय में सब जगह प्रवेश करते हैं। निर्माय विश्व, इस विश्व का निर्माण करके और आप प्रवेश करते हैं। अतः पश्यंत युक्ता मनसा मनीषिणो गुण विवाय प्यगुणम विपश्चित, इसलिए जो युक्त हैं, मनीषी हैं, विपश्चित हैं, विद्वान हैं, वे लोग आपको सृष्टि के समय गुण व्यवाय का अर्थ है कि गुणों के परिणाम के समय, सृष्टि के समय भी यद्यपि आप प्रकृति के अंदर हैं पर फिर भी अगुण हैं, निर्गुण हैं, प्रकृति के सत्व रज तम आदि गुण से शून्य हैं, तो आपको अगुण के रूप में अर्थात अप्राकृत दिव्य रूप में पहचान लेते हैं। पश्यन्ति कौन कौन? युक्ता है, मनीषिण है, विपश्चित। युक्त का अर्थ होता है जिनका चित्त समाहित है, एकाग्र है, अथवा जो भक्ति योग में लगे हुए हैं, जो भक्ति के किसी न किसी अंग में युक्त हैं, लगे हैं, तो उनको युक्त कहा गया है। जैसे भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अथवा भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, या भगवान के श्री विग्रह की आराधना कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी न किसी भक्ति के अंग में जो लगे रहते हैं उनको युक्त कहा गया है। तो जो युक्त रहते हैं, युक्त हैं, भगवान की भक्ति में लगे हैं और मनीषी, मनीषी का अर्थ होता है विवेकी, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस बात को वे लोग समझते हैं। और विपश्चित का अर्थ जो शास्त्रज्ञ, जो शास्त्रों के विद्वान है, तो जो शास्त्र के भागवत आदि शास्त्रों के मर्म को जानते हैं और विवेकी हैं और भक्ति युग में लगे हुए हैं, वे इसी संसार में गुणों के भीतर ही आपको अगुण के रूप में देखते रहते हैं। अब जानते हैं कि आप प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं हैं, आपको देखते हैं, आपको देखने का मतलब आपके इस स्वरूप को देखते हैं। तो पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो, कैसे देखते हैं? मनसा, मन से देखते हैं, मनन करते हैं, इसका अर्थ है कि मन में मनन करते हैं और चित्त में देखते हैं। मन का अर्थ चित्त भी होता है, चित्त में भीतर अपने आप पर विचार करते रहते हैं, क्योंकि ये शास्त्रज्ञ हैं, विवेकी हैं और आपके भक्ति से युक्त हैं, अतः आपको देखते रहते हैं। तो जो विवेकी हैं, भक्त हैं, मनीषी हैं, शास्त्रों को जानते हैं, वे लोग तो भगवान को पहचान जाते हैं, वे जानते हैं भगवान इस संसार में है, कण कण में है, सर्वव्यापक है, लेकिन है निर्गुण, प्रकृति के गुणों से परे है। आपका यह स्वरूप या आपका चरित्र, आपकी लीला सब अप्राकृत, प्रकृति से ऊपर है। तो प्रकृति से ऊपर जो है उसको निर्गुण कहते हैं, गुणातीत। तो भक्त लोग आपको पहचान जाते हैं। पश्यंत युक्ता मनसा मनीषिणो गुण व्यवाये प्यगुणम विपश्चित, गुण व्यवाये अपि, गुण के परिणाम अर्थात सृष्टि होने पर भी वे आपको पहचान जाते, समझ जाते। ये पहले भगवान को कहा कि ये भगवान उपादान कारण है विश्व के, तो भगवान में विकार घटता है। विकार का अर्थ है कि कोई ऐसा सोचे कि जब भगवान जगत के रूप में बन गए हैं तो अब अलग नहीं होंगे, तो उसी का उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। नहीं, भगवान प्रकृति के गुणों के भीतर रहते हैं, स्वीकार करते हैं, सृष्टि करते हैं सब कुछ, लेकिन भगवान बिल्कुल दिव्य हैं, अप्राकृत हैं किसी भी स्थिति में। और युक्ता मनीषिण विपश्चित पश्यन्ति, और भगवान को जान जाते हैं, देखते हैं। अब अनेक दृष्टांत के द्वारा श्री ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि भगवान को कैसे इसी संसार के अंदर पाया जा सकता है। कई दृष्टांत दे रहे हैं। जथाग्निमेधस अमृतम च गोसु भुव्यन्नमम्बु उद्यमने च वृत्ति योगैर मनुष्या अधियन्ति हि त्वाम् गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति। कैसे भगवान को इस संसार में पाया जा सकता है और भगवान है, इसको दृष्टांत के द्वारा समझाया जा रहा है। जथा अग्निम एधसी, जैसे एधसी अग्निम, जैसे ईंधन में काष्ठ में अग्नि वर्तमान रहता है, परंतु कुछ उपाय करने से तब अग्नि प्रकट होता है। ये सारे संसार में अग्नि व्याप्त है, काठ में भी व्याप्त है, लोहे में भी व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। यदि कहीं पर आग लगती है, आप लोगों ने सुना है, देखा है कि छोटी सी आग की चिंगारी किसी विशाल काष्ठ समूह में लग जाए तो विशाल अग्निपुंज उत्पन्न होता है, बहुत बड़ा अग्नि ज्वाला। तो अग्नि था पहले से उस लकड़ी में, काष्ठ में, उसको केवल प्रकट किया गया है। ऐसा नहीं कि पूरा आग ला करके बाहर से डाल दिया गया, अग्नि प्रकट किया जाता है, अग्नि है। तो उसी तरह से श्री भगवान इस जगत में है, सबके भीतर है, घट घट में है, कण कण में है, लेकिन उनको प्रकट करने का कुछ उपाय है, उनके दर्शन प्राप्त करने का उपाय है, और वो है भक्ति योग। भक्ति योग जब किया जाता है, भगवान का नाम जब किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, तो भगवान प्रकट होते हैं। अन्यथा यदि उपाय मालूम नहीं है, मान लीजिए काठ बहुत है, जंगल भरा पड़ा है और सब कुछ है, और किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि आग कैसे उत्पन्न किया जाएगा, उपाय नहीं जानेगा तो शीत का दुख भोगेगा और अंधकार में पड़ा रहेगा। मनुष्यों ने उपाय किया है आग को प्रकट करने के लिए, जैसे दिया सलाई बनाया, तो दिया सलाई में, दिया सलाई के दो सिरों पर कुछ मसाला लगा होता है और तीली के एक सिरे पर मसाला रहता है, तो उस सिरे को मसाला से युक्त दिया सलाई की तरफ जब रगड़ते हैं तो आग उत्पन्न हो जाता है। आग वहां है ना, बाहर से आग नहीं लाया गया, उस दिया सलाई के विशेष किनारे पर आग है और तीली के सिरे में भी आग है, तो दोनों को रगड़ने पर आग प्रकट हो जाता है। लेकिन यदि ये बात किसी को मालूम न हो कि कैसे आग उत्पन्न किया जाएगा, तो उस मूर्ख के लिए अग्नि निराकार है, तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, अग्नि प्रकट किया ही नहीं जा सकता है, कभी प्रकट नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोग तो रोज प्रकट करते हैं ना, आग है और सर्वव्यापक है, लेकिन उसको प्रकट किया जाता है। यदि तीली को, दिया सलाई के उस तीली को आदमी दिया सलाई के साथ चुपचाप रख दे तभी भी प्रकट नहीं होगा, या दिया सलाई में आग है ये कह दिया जाए और कोई व्यक्ति लगे उसको हथौड़ा से मार दे कि प्रकट होना ही पड़ेगा, या गाली दे, तो उसे तो आग प्रकट होगी नहीं। अग्नि को प्रकट करने के लिए कुछ उचित कायदा है कैसे प्रकट होगा, या किसी अरणी को, एक ऐसा कास्ट होता है जंगल में, अरणि को यदि रगड़ा जाए तो उसे आग उत्पन्न हो जाती है, अग्नि उत्पन्न हो जाता है रगड़ से, जैसे मंथन से अग्नि उत्पन्न होता है, उसी तरह से जब भगवान के नाम रूप गुण आदि का मंथन किया जाता है, आवृत्ति की जाती है, तो भगवान बिल्कुल प्रकट हो जाते हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री ब्रह्मा जी यह पहला उदाहरण दे रहे, जैसे एधसी अग्नि, ईंधन से आग उत्पन्न किया जाता है, तो इस तरह से श्री भगवान प्रकट होते हैं। इसी शरीर में जो जीव है, इस जीव को हिलाने से, या भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने से, भागवत सुनने से भगवान प्रकट होते हैं। जैसे हम लोग एक दूसरे के सामने बैठे हैं ऐसे प्रकट होते हैं, पर उपाय होना चाहिए ना। मान लीजिए जाड़ा का दिन है, दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना है, और कोई आदमी थर 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 कांप रहा है, और काफी उसके घर में ईंधन रखा हुआ है, पर वो बोका अग्नि उत्पन्न करना जानता ही नहीं, तो मरेगा कि नहीं? वो ठंडा से मरेगा। हम लोग लोक में जाड़ा कहते हैं, और संस्कृत में जाड्य का अर्थ होता है जड़ता, मूर्खता, मालूम ही नहीं है आग उत्पन्न करने का तरीका, तो अब मरेगा जाड्य भोगेगा मूर्खता। लेकिन जो विपश्चित है, विद्वान है, वो लोग जानते हैं, शास्त्र में लिखा गया कि भगवान का नाम जपो भगवान मिलेंगे, तो जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं मालूम है तो दुख भोगेगा। हम लोग देखते हैं एक जीव है बानर, बानर को और सब बुद्धि है, लेकिन बानर घर बनाना बिल्कुल नहीं जानते हैं। हम पहले पढ़े थे संस्कृत में कथा, आपने देखा होगा कुछ पक्षी होते हैं जो वृक्ष की बिल्कुल शाखा में अपना नीड बना देते हैं, खोता, और वो झूलता रहता है हवाई महल की तरह, है ना। उनकी बुद्धि देखिए, उसमें वो कोठा भी बनाते हैं या बाथरूम जो भी होता होगा उसी में रहते हैं, और आंधी भी चलती है जोर से फिर भी वो झूलते रहते हैं, गिरते नहीं है। और साधारण पक्षी कहां कहां से लेकर के और अपना घर बना लिए, कोई कीचड़ का समस्या नहीं, नली गटर निकालने का समस्या नहीं, और खिड़की केवाड़ का आर्डर देने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ बना लेते हैं। और वर्षा जब होती है तो वर्षा का पानी बाहर बाहर गिर जाता है, तो उसमें वे आनंद लेते हैं, बुद्धि है तब ना घर बना लेते हैं। उसी पेड़ पर कुछ बानर चढ़े थे और वर्षा होने लगी तो वो थर 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 कांपने लगे। तो एक बानर ने देखा कि पक्षी बहुत सुखी हैं, तो वो क्या किए कि और सब बानर शाखाओं को पकड़कर खींच करके और उनका घर नोच नाच करके फेंकने लगे, पर उसको नोचने से तो तुम्हारा जाड़ा तो जाएगा नहीं इसी तरह से मरते रहते ठंडा में। एक दिन की सत्य बात बता रहा हूं, मैं वृंदावन में देखा 8-10 बानर ऐसे थोक जमा थे सीढ़ी पर केशव कुंज में, ऐसे आपस में शायद उनके परस्पर के देह की गर्मी से कुछ उनको गर्मी मिल रही होगी, तो ऐसे बैठे थे। तो मैं गया तो मुझे दया आ गई, मैं उनके पास एक कंबल, पुराना कंबल था, वहां फेंका कि उस पर लोग बैठेंगे सब बैठेंगे, तब तक तो बाद में देखा तो वो उसको नोच नाच कर खींच खाच कर फाड़ फूड़ करके सब खत्म उस पर बैठे नहीं और ठंडे पत्थर पर बैठे तो कोई बुद्धि नहीं है। ऐसे ही जो निराकार कहते हैं ना, इन लोगों को बुद्धि है नहीं कि कैसे भगवान को देखा जा सकता है, कैसे भगवान को पाया जा सकता है। तो ब्रह्मा जी अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं कि अग्नि को जैसे उपाय द्वारा प्रकट किया जाता है, तो इस तरह से भगवान को भक्ति योग के उपाय से प्रकट किया जाता है। और वो प्रकट न भी हो तभी भक्त लोग तो उनको देखते हैं कि हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका स्वजन कहीं विदेश में है, भले यहां न हो, तो इतना विश्वास है ना कि वो है, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसकी भाषा ऐसी है, वो ये खाता है, ये पीता है, इस काम में उसकी रुचि है, ये ऐसा तो नहीं कह देता है कि नहीं दिखाई पड़ता है इसलिए निराकार। ये देखिए बुद्धि, नहीं दिखाई पड़ रहा है इसलिए निराकार है, ऐसे कहना ये कोई ज्ञान का द्योतक नहीं है, केवल मूर्खता ही साबित होती है। तो जथाग्नि मेधस अमृतम च गोसु, और जैसे गोसु गायों में अमृतम घी या दूध, गाय का दूध या गाय का घी अमृत माना गया है, अमृतम वही आज्यम। संस्कृत में कहा गया है कि गाय का घी ही इस पृथ्वी पर अमृत है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे गौओं में अमृत निकाला जाता है उपाय द्वारा, गाय से अमृत निकालने का, दूध निकालने का और दूध से घी निकालने का कुछ उपाय है ना, गाय को गाभिन होना चाहिए, वो बच्चा देगी, जब गाय बच्चा देगी तो बच्चे के लिए उसके थन में दूध बन जाता है अपने आप, जब तक वो बच्चा नहीं देगी दूध नहीं देगी। तो उसके कुछ चिन्ह होते हैं, गाय ऋतुमती होती है, गर्भ धारण करना चाहती है, उसकी कुछ बोली उसके एक्शन से पता लग जाता है कि यह गर्भ धारण करना चाहती है। तो उस गाय को पालने वाला व्यक्ति ले जाता है सांड के पास और गर्भ धारण करती है, गर्भ धारण करने के बाद उसके थन में दूध आता है और बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चे को पिलाने के लिए वो थन सामने करती है, तो बच्चे का मुख लगने से वो पिन्हा जाती है, दूध स्नेह से देने लगती है। तो उस समय कोई व्यक्ति उस दूध को निकालता है, जब दूध को निकालता है तो इस तरह से अमृत मिला, और फिर दूध को जामुन दे करके, गर्म करके जामुन दे करके दही बनाना, दही से फिर मथना तो उसे घी निकलता है। ये उपाय है, घी सब जगह व्याप्त है दूध में, और गाय में दूध सब जगह व्याप्त है, लेकिन गाय से दूध प्रकट करने का उपाय होना चाहिए ना। तो कुछ ऐसे मनुष्य हैं इस संसार में जो गाय को काट करके खून ही निकालते हैं, उसी में उनकी रुचि है। लेकिन अब इस तरह से मान लीजिए कोई गाय का दुरुपयोग करे, गाय के महत्व को न समझे और गाय काटे और कहे नहीं इसमें दूध है ही नहीं, इसमें दूध है ही नहीं, इसमें तो केवल मांस और खून है, मांस और खून ही नहीं है, उसमें दूध है, उस अमृत जिसको कहते हैं, और उस दूध को देने में गाय को प्रसन्नता होती है। तो इस तरह से गाय को चराना, खिलाना, पिलाना और इसके बाद तब वो दूध देती है। तो बुद्धिमान लोग इस उपाय द्वारा गाय से दूध प्राप्त करते हैं और दूध से घी प्राप्त करते हैं। परंतु मान लीजिए मनुष्यों के अलावा दूसरे जीव किसी को कला मालूम नहीं है, अगर उनको गाय का दूध दे भी दीजिए तो घी बना ही नहीं पाएंगे। कोई भी पशु, बानर, सानर, ये सब दूध सब घी बना नहीं पाएंगे। है सब कुछ, दूध दिया गया है, गाय भी है, तो उसे दूहना नहीं जानते या उसे उसकी गाभिन होने की भावना को समझ ही नहीं सकते, उसकी आवाज को नहीं समझ सकते, उनको दूध प्राप्त नहीं होगा, और दूध दे दिया जाए तो घी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि घी नहीं है, घी है दूध में, रुपाय चाहिए। उसी तरह इस संसार में कण कण में सबके हृदय में श्री कृष्ण है, भगवान है, परंतु उनको जानने का, उनको प्रकट करने का, उनको गलवाही देने का, उनके साथ चलने का कायदा चाहिए। वो कायदा शास्त्रों में दिया गया है और भक्तों को इसका अनुभव होने लगता है कि हाँ भगवान है और वे बड़े प्रेमी हैं, उनको देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, उनकी बातें वे सुनते भी हैं, देखते भी हैं, प्रैक्टिस कम से कम करते हैं कि अभी से भगवान को मंदिर में देखने का प्रैक्टिस करते, अभी से गाते इतना सुंदर मुकुट है भगवान का, मोर मुकुट करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर है, बेणुम क्वणंतम बांसुरी बजाते हैं, नूपुर बांधते हैं, गाय चराते हैं, ये सब भगवान को जानने का शुरुआत है, इस तरह से जाना जाता है। तो गायों से जैसे अमृत प्राप्त करते हैं मनुष्य उपाय द्वारा, तो इसी प्रकार उपाय द्वारा, भक्ति योग द्वारा भक्त जन भगवान को इस गुणमय जगत में ही पाए जाते हैं। यथाग्नि मेधस अमृतम च गोसु भूमि अन्न मम्बु द्यमने च वृत्ति, और भूमि 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 में धरती में अन्नम उपाय द्वारा अन्न प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी में सर्वत्र अन्न भरा पड़ा है, भोजन है, फल है, सब्जी है, साग है, और गेहूं, चना, चावल, ये सब धरती में है। लेकिन जो लोग उपाय जानते हैं, जैसे कृषि आदि कर्षण करते हैं, खेत को जोतते हैं, सींचते हैं, बीज डालते हैं कई प्रकार से, तो इस तरह से लाखों करोड़ों टन गल्ला पैदा करते हैं हर एक साल करते हैं ना। ये पृथ्वी में है, लेकिन पृथ्वी को कोई जोते ना, खेती ना करे और केवल जमीन खोदना चालू करे, कहे कि इसमें लोग कहते हैं कि बहुत गेहूं है, सरसों है, मैं खोद करके प्राप्त करूंगा, तो खोदता जाएगा तो कुआं हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, पानी मिलेगा, लेकिन गेहूं तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो उपाय नहीं है। गेहूं प्राप्त करने का या अन्न प्राप्त करने का कुछ उपाय है, तो आदमी उपाय करता है तो कितना कितना टन अनाज मिल जाता है, मनुष्यों का या पशुओं का परवरिश होता है, सब चल रहा है, पृथ्वी में सब कुछ है, जहां भी जाए पृथ्वी में गेहूं है, चना है, सरसों है, मटर है, लेकिन उसको प्रकट करने का क्या उपाय है, खेत को जोत करके, सिंचाई करके और उसमें उस चीज का बीज डालें, तो एक बीज पचासों बीज लेकर के आता है, ये उपाय है। और ऐसे अनावरण रूप से सामने खोदते जाइए खोदते जाइए तो एक दाना भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह कोई मनुष्य भगवान के बारे में जानने का प्रयास करता है, लेकिन उसको कायदा मालूम है नहीं, कुछ कायदा मालूम नहीं है कैसे भगवान को पाया जाएगा, बस जानता है कि हाँ भगवान है, भगवान है, तो शुरू में सुन लेता हाँ भगवान निराकार है, तो निराकार है तो पाओगे क्या, तब वो क्या पाओगे, तो पाए ही हो ना, जब निराकार ही मान रहे हो तब तो ऑलरेडी मिला ही हुआ है, या नहीं मिले हुए को ही मिला हुआ समझ रहा है आदमी। भगवान के रूप में श्रद्धा होनी चाहिए। गजेंद्र स्तुति में गजेंद्र जी कहते हैं भगवान से, दुदृक्षवो जस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संग मनय सुसाधव चरंत लोक व्रतम व्रणम बने तस्य भूतात्म भूता सुहृद समय गति। जिनके चरण कमल को, जिनके रूप को देखने की लालसा वाले लोग अलोक व्रत का आचरण करते हैं और वन में चले जाते हैं। दिदृक समो जस पदम सुमंगलम, वह बहुत बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भगवान के रूप को देखने की लालसा है, उसको दिदृक्षा कहते हैं। दिदृक्ष वो जस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मनय सुसाधव, पहले तो इच्छा चाहिए भगवान से मिलने की और भगवान के उस सुंदर स्वरूप को देखने की, उनका आलिंगन करने की, उनके चरण को टच करने की, सब इच्छा चाहिए। तो शुरू में ही ये मान लेंगे कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है तो इच्छा क्या खाक होगी, क्या इच्छा होगी, ये कोई ज्ञान है। आप में से मान लीजिए किसी को खबर आवे अपने गांव से, फोन आवे और फोन पर कोई कह दे आपकी स्त्री निराकार हो गई आज, तो अब क्या प्रेम रहेगा, तो साकार स्त्री है तो अच्छा है, भगवान से भी अच्छा है, क्योंकि कम से कम फोन करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स तो देगी ना, लेकिन निराकार किस काम आएगा, किस दिन काम आएगा, कब बात करेगा, वो मरेगा भक्त तब भी आएगा कि नहीं, कोई ठीक नहीं है, है ना, क्या क्या काम आएगा, न समाचार पूछेगा और न तो कोई पैसा देगा या न पानी का पूछेगा, न भोजन देगा, कुछ नहीं, कैसे लोगों को ये पसंद पड़ता है समझ में नहीं आती है बात। तो कैसा दिमाग है तो? और इसी में ही तीसरी हो जाती है, बस भगवान का रूप नहीं है, यही बहुत भारी ज्ञान हो गया। केवल निगेशन करना, निगेटिव बात बोलना, ये कोई ज्ञान थोड़े है। अरे भगवान के बारे में बोलना चाहिए, उसका मुख कैसा है, चरण कैसा है, उसके रिलेटिव कैसे है, भगवान की पत्नी कैसी है, भाई कैसा है, उसकी लीलाएं कैसी है, घर कहाँ है, एड्रेस क्या है, इसको ज्ञान कहते हैं। उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसको कोई जान ही नहीं सकता है, तो फायदा क्या है? और जान ही नहीं सकता तो तुम क्यों जानने का प्रयास कर रहे हो? जान ही नहीं सकता है, अलख निरंजन, उसको कोई लख ही नहीं सकता है, लख ही नहीं सकता तो मरो इसी तरह से सोच सोच करके। लेकिन यहां तो साफ भगवान को लक्षित कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं ब्रह्मा जी, और भगवान के रूप का गुण गा रहे हैं, और वो कहते हैं इसी रूप को उपाय द्वारा देखा जा सकता है, जैसे अन्न प्राप्त किया जाता है खेती करके। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, पृथ्वी में है अन्न, उपाय द्वारा प्रकट होगा, उपाय का अर्थ है खेती करना, कृषि करना, उसके द्वारा उत्पन्न होगा। तो इसी तरह से भगवान को प्रकट करने के लिए उपाय चाहिए, और उपाय में सबसे बड़ा उपाय है भगवान के नाम को बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की कथा सुनना, भगवान की पूजा करना, ऐसे भगवान दिखाई पड़ते हैं। ये ब्रह्मा जी सब बात बता रहे हैं। भूमि अन्नम, पृथ्वी से अनेक उपायों द्वारा अन्न उत्पन्न किया जाता है, कितने कितने फल उत्पन्न होते हैं, कैसे कैसे कितनी सब्जियां उत्पन्न होती हैं। और कोई एक दिन संघ बनावे, मान लीजिए किसान संघ बना लें, चाहे कोई पागल किसान, और कहेंगे नहीं नहीं कहीं पृथ्वी में कोई अन्न नहीं है, कुछ लोगों ने झूठा प्रचार कर दिया है कि इसमें बहुत अन्न रखा हुआ है, इसमें भिंडी है, टमाटर है, आलू है, और जौ है, गेहूं है, चना है, सरसों, सब कुछ। कौन कहता है कि रखा, मैं तो इतना गड्ढा खोदा, एक दाना मुझे गेहूं का नहीं मिला। और मान लीजिए ये संघ बनाकर कहे कि पृथ्वी में अन्न नहीं है, कोई अन्न नहीं है, न चना है, न मटर है, न गेहूं है, कुछ नहीं है, तो क्या उनके इस बात को प्रमाणिक माना जाएगा? पर कलयुग में ऐसे भी मूर्ख मनुष्य हैं जो सोचेंगे, आखिर भाई वो लोग कुछ कह रहे हैं तो कुछ बात तो जरूर है, और रास्ता निकालेंगे अब समन्वय का, नहीं आखिर 10 आदमी कह रहे हैं तो उसमें कुछ सत्य है, तब तो कह रहे हैं। आखिर इतनी जनसंख्या संसार की ईश्वर को निराकार कह रही है, तो आखिर कुछ दम तो जरूर है, कुछ बात जरूर, क्या बात है? कुछ नहीं है। जैसे पृथ्वी पर मान लीजिए अधिकांश जनसंख्या कहने लगे कि पृथ्वी के भीतर एक भी आलू नहीं है, हमने खोद खोद करके देखा अरे खेती करके 2-4 महीना प्रतीक्षा करके खोदोगे तब न मिलेगा आलू, या गेहूं उस तरह से मिलेगा, चना मिलेगा, कुछ किए नहीं, न भागवत सुने, न भगवान का जप किए, न भगवान के मंदिर में पूजा किए, न भक्तों का संग किए, और ईश्वर के बारे में ज्ञानी बनकर चल देते, क्या ज्ञान होगा? करेंगे तब न ज्ञान होगा। तो भूमि अन्नम और अम्बु, जैसे पृथ्वी में जल है, लेकिन जल को उपाय के द्वारा प्रकट किया जाएगा। जल है ना, जो व्यक्ति कुआं खोदना नहीं जानता है, बोरिंग करना नहीं जानता है, तो मर जाएगा पानी के बिना। कितने उपाय से पृथ्वी से जल को प्रकट किया जाता है, जल की बहुत आवश्यकता है नहाने के लिए, पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, कई तरह से खेतों की सिंचाई के लिए, पर जल को प्राप्त करने का उपाय होता है। पृथ्वी में अपार जल राशि है, लेकिन उसको प्रकट किया जाता है। और उद्यमने का एक अर्थ श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, उत्यम, जल है पृथ्वी में, लेकिन उसको अपने काम में लेने के लिए नल द्वारा मशीन द्वारा उसको ऊपर चढ़ाया जाता है। इसलिए आदमी कहीं ऊंचे ऊंचे फ्लैट में भी रह रहा है, पर देखा जाए कितनी बुद्धि है मनुष्यों के पास, पृथ्वी के भीतर के जल को घर घर में पहुंचाया जा रहा है नल द्वारा। ये वॉश बेसिन है तो बाथरूम है तो किचन है, सब जगह टोटी लगी हुई, कहां पानी है और उपाय द्वारा उसको कहां कहां ले जाया जा रहा है। तो जैसे इस तरह पृथ्वी के अव्यक्त जल को ऊपर उठा करके जगह जगह दिया जा रहा है, तो इस तरह से भगवान वास्तव में प्रकट हो सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं, उनको झूला झुलाया जा सकता है, उनको खाना खिलाया जा सकता है, उनके साथ गलवाही देकर चला जा सकता है, उनका गीत गाया जा सकता है। हरे कृष्ण। तो श्री ब्रह्मा जी भगवान शिव के साथ मिलकर श्री भगवान के साक्षात्कार और करने का विधान उपाय वर्णन कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उपाय द्वारा। नौ उपाय है भगवान को प्राप्त करने के, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इन नौ उपाय शास्त्र में बताए गए भक्ति के अंग हैं। भगवान के विषय में सुनना और कीर्तन करना, स्मरण करना, वंदना करना, अर्चन करना, दास्य भाव में रहना, भगवान को अपना मित्र समझना, सेवा करना और भगवान को सर्वस्व अर्पित करना, ये नौ उपाय है। इन नौ उपायों से भगवान को जाना जा सकता है, उनको प्रकट किया जा सकता है और उनसे बहुत बड़ा प्रेम बढ़ाया जा सकता है। तो इसको करना चाहिए। उद्यमने च वृत्ति, उद्यम व्यापार, व्यापार के द्वारा जैसे लोग जीविका चला लेते हैं, यहाँ के वस्तु को वहां बेचना, वहां के वस्तु को यहाँ बेचना, या नृत्य गीत आदि है, नाचने वाले गाने वाले होते हैं, उस गाते हैं और उसे उनकी जीविका चलती है। देखा गया है कई कई प्रकार के काम हैं। तो जैसे व्यापार द्वारा जीविका चलती है और पृथ्वी से उपाय द्वारा अन्न उत्पन्न होता है, पानी उत्पन्न होता है, पानी को ऊपर उठाया जाता है, और गाय से जैसे अमृत प्राप्त किया जाता है उपाय द्वारा, और ईंधन से काष्ठ से जैसे अग्नि को प्राप्त किया जाता है, इसी तरह भक्ति योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पाया जाता है। किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि वो भक्ति करे, उपाय करे, और कुछ उपाय बड़े सरल हैं। आदमी जैसे तैसे भी उस उपाय का केवल अवलंबन करे तो वो भगवान मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी है, ट्रेन है, कोई व्यक्ति बर्थ करा करके उस पर जाता है, टिकट लेकर के जाता है, लेकिन किसी तरह से मान लीजिए किसी बच्चे को या किसी कुत्ते को भी उस पर बैठा दीजिए तो उसको मालूम नहीं है कि गाड़ी कहाँ ले जा रही है, लेकिन वो भी पहुंच जाएगा क्योंकि गाड़ी ठीक दिशा में जा रही है। तो एक अज्ञ बालक भी माँ के गोद में जाता है तो भी उसी रफ्तार से जाता है, उसी स्पीड से पहुंचेगा जहां माँ जा रही है। इसी प्रकार यदि मान लीजिए माँ भक्ति कर रही है, जप कर रही है, और बच्चा जानता नहीं है कृष्ण को, परंतु उसके हाथ का दिया हुआ प्रसाद खाता है, उसके गोद में रहता है, उसे हरे कृष्ण बोलेगी, भगवान का नाम बोलेगी, भगवान की आरती करती है माँ, तो बच्चा वही खड़ा होकर देखता है, तो नहीं जानता है कृष्ण कौन है और ये क्या कर रही है, लेकिन फिर भी एक संस्कार बनता है। तुलसी जी की पूजा करने चले माँ तो बच्चा खड़ा होकर देखता है, बाद में सीख लेता है। भक्ति योग इतना प्रबल है और व्यापक है कि कोई से बाकी नहीं रह सकता, तो बहुत सरल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ है भक्ति। जो लोग नहीं करते हैं उनको लगता है कि ये बहुत भारी पहाड़ है, कैसे होगा, लेकिन जो करते हैं उनके जीवन का वो आनंद है। जो भगवान की आरती करते हैं, जप करते हैं, तो उसको किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वो आनंद है, उस आनंद को प्राप्त किए बिना वो नहीं रह सकते। बहुत बड़ा सुख और बहुत बड़ा साधन है, उपाय है भगवान से मिलने का, मुक्ति प्राप्त करने का, दुख से मुक्त होने का। तो श्री ब्रह्मा जी इस श्लोक में यही कह रहे हैं, पांच पांच उदाहरण दिए हैं। तो इस तरह से योगैर मनुष्य अधियंति ही त्वाम गुणेश बुद्धिया कवे वदंती। कवि लोग, विद्वान लोग, भक्त लोग इस प्राकृत जगत में ही आपको इस तरह प्राप्त कर लेते हैं और आपका अपनी अपनी रुचि के अनुसार वर्णन भी करते हैं। वदंती केवल अधियंती ही नहीं, अधियंती का अर्थ होता है प्राप्त कर लेते हैं, आपको प्राप्त कर लेते हैं, और वदंती च, और आपके विषय में बोलते भी हैं, भगवान के विषय में विविध गुण गाते हैं, पद गाते हैं, कथा कहते हैं, वदंती च। हे प्रभु, आज आपने हमें दर्शन दिया, लोग बहुत बहुत काल से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब भगवान से भेंट होगी। तम त्वाम वयमनाथ समुज्जिहानम सरोज नाभाति चिरेप्सितार्थम दृष्ट्वा गता निवृत्ति मध्य सर्वे गजाद्वार्ता गजाद्वार्ता इव गांगमम। हे प्रभु, हम लोग जल रहे थे, बहुत दुखी थे, लेकिन आपको उगते हुए हमने देखा, जैसे सूरज उगता है, चंद्रमा उगता है, वैसे आप उगे, यही प्रकट हो गए। हे सरोजनाथ, आपके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल से हम सब लोगों का जन्म हुआ है। हे नाथ, आप हमारे प्रभु भी हैं और हमारे पिता भी हैं। सरोजनाभ है मतलब पद्मनाभ है, भगवान को कहते हैं, भगवान के नाभि से कमल हुआ और कमल से ही सारा लोक जन्म लिया, ब्रह्मा जी जन्म लिए, तो भगवान पिता है। तो कृपा उत्पन्न करने के लिए देवता लोग, ब्रह्मा जी आदि कह रहे हैं कि अब तो हमारे पिता हैं सरोज नाभ, पद्म नाभ, और उसी से हमारा जन्म हुआ, तो आप हम लोगों पर कृपा कीजिए और आप ही हमारे प्रभु हैं, नाथ। नाथ सरोज नाभ, दो संबोधन, हे नाथ, हे सरोज नाभ। सरोज कमल को कहते हैं, तो आपके नाभि से लोकात्मक कमल उत्पन्न हुआ और हम सब उससे उत्पन्न हुए हैं, तो आप हमारे पिता हैं, हमारे प्रभु हैं। अति चिर इप्सितार्थ, बहुत दीर्घ काल से हम लोग आपके दर्शन की लालसा कर रहे थे, कब हम भगवान को भर आंख देखेंगे। अति चिर इप्सित अर्थ, अति चिर का अर्थ बहुत काल से, करोड़ों करोड़ों वर्ष से हम प्रतीक्षा कर रहे थे। इप्सित अर्थ, जहां आप हमारे इप्सित अर्थ हैं, आपका ये सुंदर रूप देखने की लालसा हम लोगों को थी, तो आपको देख करके आज हम सभी लोग निर्वृत्तिम गता परमानंद में मग्न हो गए। कैसे? जैसे गजा द्वारता इव गांग मम, जैसे किसी जंगल में आग लगी हो और उसमें हाथियों का समुदाय फंस गया है, हाथी चारों तरफ से घिर गए हों जंगल की आग में, लेकिन अकस्मात यदि हिमालय से निकल करके ठंडी ठंडी धारा पानी से जो गंगा जी अगर मिल जाए, तो वे हाथी अगर अकस्मात आकर के गंगा में कूद पड़े, तो फिर दवाग्नि से उनको जलन नहीं होती है, ताप नहीं होता है, वो सुखी हो जाते हैं। ऐसे आपको देख करके हम लोग सुखी हो गए, आपके इस सुंदर रूप को देख करके हमारी जलन मिट गई, हम इसी को देखना चाहते थे, बहुत काल से हमारी यह चिर इप्सित अभिलाषा था, बहुत काल से हमारा यह अर्थ था, हमारे जीवन का उद्देश्य था कि हम आपको देखें, आपको प्रणाम करें, आज आपको देख करके हम लोग सुखी हो गए। अब हम यहीं पर कथा को विश्राम दे रहे हैं और कल यहां से कथा होगी, भगवान को प्रकट रहने दीजिए। तो ब्रह्मा जी, भगवान शिव और इंद्र आदि देवता को श्री भगवान उपाय बताएंगे, उनका राज चला गया था, दुख में थे, तो भगवान कहेंगे कि आप लोग समुद्र मंथन कीजिए और मैं रहूंगा साथ में। वास्तविक बात यह है कि भगवान विहार करना चाहते थे समुद्र में, तो कच्छप अवतार लेंगे। किस प्रकार भगवान देवताओं से बात कर रहे हैं और मंदराचल को लेकर के देवता और दानव समुद्र तट पर पहुंचे, ये कथा कल आएगी। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।